तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कलयुग में अनेक विशेष गुण प्राप्त होते हैं, इसीलिए कलि का दूसरा नाम है काम लाति ददाति कृष्ण इति कलि। कलि की परिभाषा क्या है? काम लाति ददाति कृष्ण इति कलि, अर्थात कलयुग वो युग है जहाँ लाति ददाति, लाति अर्थात बहुत आसानी से, जिस युग में कृष्ण बहुत आसानी से प्राप्त हो जाते हैं उस युग को कहा जाता है कलयुग। तो भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन कर और उनके भक्तों के संग में तीव्रता के साथ हरि कथा श्रवण करने मात्र से ही हम भक्ति मार्ग में बहुत शीघ्र आगे बढ़ सकते हैं। बोले कृष्ण भगवान की, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरि गोपाल
की। तो समस्त श्रीमद् भागवत की कथा का अंततः निष्कर्ष ये है कि हम नियमित रूप से भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करें। तो ये श्रीमद् भागवत कथा की सीरीज कल समाप्त होगी, लेकिन उसके बाद भी हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप नियमित रूप से हमारे मंदिर में आ सकते हैं, सत्संग कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और अपने निजी जीवन में हरि नाम को बहुत ही अधिक महत्व दीजिए। तो इसके माध्यम से आप अपने जीवन में इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत की कथा मनोरंजन के लिए नहीं होती, श्रीमद् भागवत की कथा हृदय के शुद्धिकरण के लिए होती है, जीवन के परिवर्तन के लिए होती है। तो इस बात को हमेशा हृदय में रखें, ध्यान रखें। तो आगे वैसे लीलाएं तो कई सारी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ही उस लीला की चर्चा करते हैं जब महान राजा जो कि कृष्ण से बहुत द्वेष करते थे, उनका नाम था जरासंध, तो कंस की पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की पुत्रियां थी। कंस के वध के पश्चात अस्ति और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता के पास गई और जरासंध से कहने लगी कि पिताश्री देखो, उस कृष्ण ने हमारे जीवन को उजाड़ दिया है, अब हम विधवा हो गई हैं सब उस कृष्ण की वजह से। जरासंध ने कहा, अच्छा कृष्ण ने एक कार्य किया है तो अब मेरे जीवन में बस यही लक्ष्य है, संपूर्ण यदु वंश का विनाश। और ऐसा सोचकर जरासंध एक बहुत ही विशाल सेना को आयोजित कर मथुरा पर चढ़ावा करते हैं। उस समय मथुरा में भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के साथ थे। समाचार मिला कि जरासंध 23 अक्षहिणी सेना के साथ आया है। एक अक्षहिणी सेना में करीब 22,000 घुड़सवार, 22,000 हाथी, 65,000 रथ और 1,00,000 से ऊपर सैनिक जो जमीन पर चलते हैं, ये होता है एक अक्षहिणी। इस तरह 23 अक्षहिणी सेना के साथ वो आए और उन्होंने मथुरा पर चढ़ावा किया, आक्रमण किया। श्री कृष्ण बलराम ने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, तो कृष्ण ने एक विचार ऐसा किया कि मैं पृथ्वी में किस लिए आया हूँ, मैं पृथ्वी में आया हूँ धर्म की रक्षा करने और अधर्मियों को निकालने। अब जरासंध पूरे उत्साह के साथ मुझ पर आक्रमण कर रहा है, तो युद्ध करते समय मैं जरासंध की संपूर्ण सेना को उजाड़ दूंगा, विनष्ट कर दूंगा, लेकिन जरासंध को हम छोड़ देंगे। तो ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को अपनी योजना बताई और तभी उन्होंने देखा कि आसमान से दिव्य रथ आ गए और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के दिव्य अस्त्र उनके समक्ष आ गए। उनकी सेवा में कृष्ण बलराम दोनों अपने रथ पर सवार होकर मथुरा के बाहर गए और मथुरा नगरी के बाहर ही उन्होंने जरासंध के इस संपूर्ण सेना के साथ युद्ध किया और युद्ध ऐसा घमासान हुआ कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जितने भी जरासंध के सैनिक थे, प्रत्येक सैनिक के हाथ और पैर काट दिए और उसके बाद उन्हें मारा। जितने हाथी थे सभी हाथियों के सूंडों को काट दिया, जितने घोड़े थे रथ थे सबके टुकड़े टुकड़े कर दिए और रक्त की नदियां बह रही थीं और इन रक्त की नदियों में बड़े विशाल मृत हाथी के शरीर द्वीपों के समान प्रतीत हो रहे थे और उसमें डूबते हुए शरीर और उनके हाथ ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नदी में कोई घास का टुकड़ा बह रहा हो और इन सभी शरीरों में देहों पर बहुत ही बहुमूल्य रत्न और आभूषण जड़े हुए थे। कृष्ण बलराम ने संपूर्ण सेना का विनाश किया। जरासंध ने देखा कि कोई भी नहीं बचा। जरासंध को बलराम जी ने पकड़ लिया। बलराम जी ने जरासंध को बांध दिया। तब कृष्ण बलराम जी को कहने लगे, अरे बलराम जी आप भूल गए क्या, जरासंध को छोड़ दो। क्यों छोड़ दें? क्योंकि जरासंध जाएगा और उत्साह पूर्वक फिर से अनेक राक्षसों को एकत्र करके लाएगा, हम बैठे बैठे उनको मार देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ आविर्भाव का यही तो एक विशेष उद्देश्य है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो हम यहाँ वहाँ क्यों भागते रहे, जरासंध ये सेवा करेगा, तो इसीलिए इसे छोड़ दो। और इसके हृदय में इतना द्वेष इतना उत्साह है कि ये कार्य अवश्य करेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चार प्रकार के लोग होते हैं, लेजी इंटेलिजेंट, लेजी फूल, एक्टिव इंटेलिजेंट और एक्टिव फूल। तो इसमें सबसे श्रेष्ठ होता है लेजी इंटेलिजेंट, जो बैठकर सारे कार्य करवा लेता है। और सबसे खतरनाक होता है एक्टिव फूल, जो मूर्ख है लेकिन अपनी मूर्खतापूर्ण योजनाओं को पूरे उत्साह के साथ प्रयास कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जरासंध इतनी बुरी तरह हारा है लेकिन इसके हृदय में अहंकार इतना है कि ये बार बार फिर आएगा। और हुआ यूं कि जरासंध ने फिर मथुरा नगरी पर आक्रमण किया, फिर उनके संपूर्ण सेना का यही हाल हुआ। प्रत्येक हाथी घोड़ा सैनिक सबको विनाश कर दिया भगवान ने और केवल एक जरासंध बच गए। लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि में गया नहीं कि मैं किसके साथ युद्ध कर रहा हूँ। छोड़ दिया तो प्रसन्न हो गए, वाह एक और मौका मिला। ये नहीं सोचा कि कितने शक्तिशाली प्रतिद्वंदी है मेरे। ये है अहंकार का असर। 17 बार आक्रमण किया, 17 बार यू ही हुआ। 18वीं बार जब भगवान श्री कृष्ण के नगरी पर उन्होंने आक्रमण किया, तब हुआ यूं कि एक म्लेच्छ राजा कालेवन ने दूसरी ओर से आक्रमण किया। एक ओर से अपने जरासंध आक्रमण करने वाले थे, तो भगवान कृष्ण ने बलराम को बुलाया और दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया कि देखिए एक तरफ से कालेवन का आक्रमण, यदि हम दोनों में से कालेवन को लड़ने जाते हैं तो पीछे से हो सकता है जरासंध का आक्रमण हो, तब क्या करें। तब उस क्षण उन्होंने निश्चय किया कि जितने भी यहाँ पर निवासी हैं इनको रातों रात मथुरा नगरी से लेकर एक विशेष स्थान में पहुंचा देंगे जहाँ वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे। तो रातों रात भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी को तैयार किया और जितने भी निवासी थे मथुरा नगरी के उनको उनकी नींद में ही द्वारका नगरी में पहुंचा दिया। बोलो द्वारका धाम की। और समुद्र के अंदर बनाया था भगवान ने, जिससे कोई बाहर का व्यक्ति आक्रमण न कर सके। तो भगवान ने कहा चलो ये तो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, भक्तों के सुरक्षा का प्रबंध कर दिया है, अभी इस म्लेच्छ राजा से निपटते हैं। कौन है? कालेवन। तो भगवान ने देखा कि कालेवन तो म्लेच्छ है, इनके साथ युद्ध करना किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। तो भगवान बिना युद्ध किए ऐसे चलने लगे। तो कालेवन बड़ा क्रोधित हुआ, मैं इतने जोश के साथ उत्साह के साथ युद्ध करने आया हूँ, ये मुझे देखता ही नहीं और पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। तो कालेवन बड़े क्रोध के साथ भगवान के पीछे जाने लगे, बुरा भला कहने लगे। और कालेवन को लग रहा था कि बस अभी भगवान को मैं पकड़ ही लूंगा, अभी कृष्ण मेरे हाथ में आ जाएंगे। लेकिन इतने भ्रम में थे कि चाहे कितना भी प्रयास करे वो कृष्ण को पकड़ नहीं पा रहे थे। घूमते 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 घुमाते कृष्ण भगवान ने कालेवन को एक ऐसे गुफा में लाया, गुफा के अंदर वो चले गए, कालेवन पीछे पीछे गया। और कालेवन ने देखा कि एक व्यक्ति सोया हुआ है, काफी अंधकार था और अंधकार में कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तो कालेवन को लगा ये अवश्य कृष्ण होगा, देखो मुझसे युद्ध कर रहा था, अचानक युद्ध भूमि छोड़कर इतना आलसी यहाँ पर सो रहा है। ऐसा कालेवन ने विचार किया और जोर से एक लात लगाई। और जैसे ही कालेवन ने लात जमाई, पाद प्रहार किया, तभी वो व्यक्ति अपनी नींद से उठा और उसकी आंखें खुली। और जब उसकी आंखें खुली तो कालेवन की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि वो व्यक्ति थे मुचकुंद। मुचकुंद के आंखों से ज्वाला निकलने लगी और जब वो ज्वाला निकली तुरंत कालेवन वहीं पर जलकर राख हो गए। अब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कथा सुन रहे थे, अचानक उनको संशय आया, क्या चल क्या रहा है। कलेवन पीछे पीछे भाग रहा है, गुफा में गए, एक आदमी सो रहा है, अचानक सो के उठा और जल के राख हो गए। क्या है ये, ये कथा है कि क्या है, बताइए इसके पीछे रहस्य क्या है, ये व्यक्ति कौन है। तब सुखदेव गोस्वामी महाराज ने बताया कि प्रिय परीक्षित महाराज सुनो कि ये व्यक्ति मुचकुंद है, और मुचकुंद कौन थे, देवताओं के रक्षक। देवताओं ने मुचकुंद को बुलाया था अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि वो महान योद्धा थे और क्षत्रिय होने के नाते उनका एक कर्तव्य था कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करें। तो उस समय जब देवताओं के यहाँ आपात परिस्थिति उठ खड़ी हुई थी, तब उन्होंने देवताओं की रक्षा की और इतनी तल्लीनता से रक्षा की कि कई वर्षों तक बिना सोए एक झपकी नहीं ली। तो काफी समय के पश्चात जब देवता पूर्ण रूप से राक्षसों पर हावी हुए, तब उन्होंने मुचकुंद को कहा कि अब हम आपको सेवा निवृत्त करते हैं। आप कहिए कि सेवा निवृत्ति के समय आप क्या प्रोविडेंट फंड चाहेंगे, आपको चाहिए क्या, इतनी सेवा की है आपने। तो उन्होंने कहा इतने वर्षों तक मैं बिना थके बिना आंखों को बंद किए युद्ध कर रहा था, अभी मुझे चाहिए नींद, मैं सोना चाहता हूँ, और इतने समय तक सोना चाहता हूँ कि बीच में कोई मेरी नींद में विघ्न डाले तो मैं उसे जलाकर राख कर दूं, क्योंकि मैं इतना थका हूँ कि अपनी नींद में कोई विघ्न नहीं चाहता। ऐसा होता है कई बार तो बहुत थक जाते हैं तो फोन वोन निकाल कर रख देते हैं और सो जाते हैं, या नोट डाल देते हैं डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह, कहते बहुत नींद आई है और नींद का आनंद लेंगे। तो मुचकुंद ने कहा नींद का ऐसे आनंद लेना चाहता हूँ कि बीच में कोई विघ्न डाले चलाकर भस्म कर दूं। तो तभी वो ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, कालेवन को छूना भी नहीं चाहते थे, कालेवन को मारना भी चाहते थे, मुचकुंद को अपना दर्शन भी देना चाहते थे, सब कुछ करना चाहते थे, सब कुछ केवल कृष्ण कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए कालेवन को लेके वहां उस गुफा में लाए, एक तीर से कई निशाने। मुचकुंद तब देखे कि अचानक पूरे गुफा में बहुत प्रकाश फैल रहा है, देखा ये प्रकाश का कारण क्या है, देखा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ऐश्वर्य के साथ सामने खड़े हैं। सोचिए अचानक सो के उठे और कृष्ण खड़े हैं, क्या हाल होगा। मुचकुंद तो प्रेम से पागल हो गए थे, ये जो मेरे स्वामी मेरे समक्ष खड़े हैं मुझ पर ऐसे अहेतुकी कृपा करने आए हैं। मुचकुंद भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर इतने भाव विभोर हुए कि वो उनकी स्तुति करने लगे, सुंदर श्लोक गाने लगे। भगवान श्री कृष्ण उनसे पूरी तरह संतुष्ट हुए और उन्होंने कहा कि मुचकुंद क्योंकि तुमने अपनी सेवा योद्धा के तौर पर मेरा स्मरण करते हुए किया, आपने अपनी सेवा मेरे भक्तों की रक्षा की, मेरे भक्त देवता थे उनके जीवन में समस्या थी, आपने मेरे भक्तों की सेवा की, इसीलिए आपकी सेवा भाव को देखकर मैं आप पर कृपा करने आया हूँ। तो मुचकुंद से भगवान प्रसन्न क्यों थे, क्योंकि मुचकुंद दासों के दास बन रहे थे, मुचकुंद भक्तों की सेवा में तल्लीनता के साथ लगे थे, इतनी तल्लीनता के साथ भक्तों की सेवा कर रहे थे कि सोए भी नहीं, नींद भी भूल गए। तो इसीलिए भगवान उनसे संतुष्ट हुए। उसी प्रकार हम भी यदि भगवान के भक्तों की इस तरह सेवा करेंगे, लेकिन रात को नींद लेने के बाद ही, लेकिन भक्तों की तल्लीनता के साथ सेवा करेंगे तो भगवान हमसे संतुष्ट होंगे। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि जो भी कुछ करो नियमित रूप से करो, उचित मात्रा में सोना, उचित मात्रा में खाना इत्यादि, युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो क्योंकि मुचकुंद कई साल तक सोए नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम उनका अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन मुचकुंद की तल्लीनता को हम स्वीकार कर सकते हैं। सेवा में जो उनका उत्साह था, जो उनका चित्त एकाग्र था, केवल एक उद्देश्य था उनके जीवन में भक्तों की सेवा, उससे भगवान श्री कृष्ण इतने संतुष्ट हुए कि वो स्वयं वहां प्रकट हुए। और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण वापस लौटकर मथुरा नगरी में गए और तभी जरासंध ने आक्रमण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण निश्चय किया 17 बार मैंने जरासंध के साथ युद्ध किया है, अब इस बार मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं चला। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि को छोड़कर बड़े प्रेम से चलने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो शाम को टहलने निकले हों। जरासंध ने देखा और जरासंध को विश्वास नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। जरासंध को लगा कि उनकी तपस्याओं का फल अभी उसको प्राप्त हो रहा है, कि कृष्ण को अंततः वो हरा पाएगा। और वो चिल्लाने लगा और कहने लगा, अरे मूर्ख कहाँ भागते हो, डर गए? हमें पहले ही पता था कि तुम बार बार कभी युद्ध नहीं कर सकते, क्षत्रियों का सामना नहीं कर सकते, इसलिए डर के भाग रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम है रणछोड़। तो गुजरात में एक सुंदर मंदिर है रणछोड़ राय जी का मंदिर डाकोर में। अब देखिए विंस्टन चर्चिल कहा करते थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने सैनिकों को कि प्रिय सैनिक, यदि युद्ध के समय अपने साथी को युद्ध को त्याग कर भागते हुए देखो तो उसे छोड़ना मत, सबसे पहले उसी को गोली से भून देना, क्योंकि यदि वो युद्ध को त्यागेगा तो बाकियों पर असर पड़ेगा। तो इसे कहते हैं पलायनवाद, युद्ध से भागना। तो हम भी देखते हैं भारत में कोई युद्ध में महान कार्य करता है तो उसे दिया जाता है परम वीर चक्र, है ना? लेकिन कोई युद्ध भूमि को छोड़ कर जाए तो उसको क्या परम वीर चक्र दिया जाएगा कि सही मौके पर युद्ध छोड़ गए, भाई सही मौके पर भागे, जियो ये लीजिए आप मेडल, आपने अपनी क्या जान बचाई, वाह ये लीजिए जय हो आपकी। नहीं, कोई युद्ध भूमि छोड़कर भागे तो उसको सभी दुत्कारते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो वास्तव में भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो रणछोड़ होना कोई बहुत विशेष बात नहीं है, कोई सराहनीय बात नहीं है। लेकिन कृष्ण जब रणछोड़ रच कर जाते हैं तब उनके लिए मंदिर बनाते हैं रणछोड़ राय का मंदिर, और वहां पर सारे भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं, उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, और वहां पर पुजारी चिल्लाते हैं मंदिर माँ कौन छे, तो चिल्लाते राजा रणछोड़ छे। सभी कहते हैं हाँ रणछोड़ राय जी हैं, सबको अपनी कृपा बांट रहे हैं। तो देखिए ऐसा कैसे संभव है कि कोई रण छोड़ कर जाए और उसकी स्तुति हो? ये सारी बातें सुनकर लोग भ्रमित हो जाते हैं, तुम्हारा भगवान क्या है, एक तो ग्वाला है दूध वाला है और दूसरा किसी के पिता की हत्या होती है तो उसका भक्त खड़े होकर हत्यारा की जय जय करता है, प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव आपकी जय हो, मेरे पिता की क्या खूब तुमने मृत्यु की, वाह। ये कैसे लोग हैं, अपने पिता का कोई हत्यारा होगा तो हमारा जानी दुश्मन बनेगा। यहाँ पर उन्होंने हत्या की और प्रहलाद महाराज एक पूरा चैप्टर उनके स्तुति है, नरसिंहदेव की जय हो, क्या आपने मारा मेरे पिता को, वाह। और यह है कि अवैध स्त्रियों का संग कर रहे हैं रात के अंधेरे में जंगल के बीच, और वो भी इतनी सारी विवाहित स्त्रियां हैं, जवान हैं, ये है आपके भगवान। इतना घर में मक्खन पड़ा हुआ है छोड़ जाते हैं पड़ोसी के लाकर मक्खन चुराते हैं और बाद में झूठ बोलते हैं, ये कोई संत के लक्षण है? ये तो भौतिक जगत में भी कोई व्यक्ति नहीं करता, और आप कहते हो ये आपके भगवान हैं, और अंततः रण छोड़कर भाग जाते हैं, डरपोक हैं, और आप उनकी स्तुति करते हो। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, इन्हें हम समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति के माध्यम से ही जाने जाते हैं और किसी माध्यम से नहीं। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं धर्मस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जाया किमु नाम रूपमधिकं किं तत्सुधाम्नो धनं वंशः को विदुरस्य यादवपतेरुग्रस्य किं पौरुषं भक्तिर्तुष्यति केवलं न च गुणैर्भक्तिप्रियो माधव। भगवान श्री कृष्ण किसी भी भौतिक योग्यताओं से जीते नहीं जाते, चाहे हमारे पास भौतिक उपलब्धियों की बहुत लंबी सूची क्यों न हो, लेकिन कृष्ण उनकी ओर देखते भी नहीं। धर्मस्य आचरणम् धर्म व्याज, मृगारी के पास धर्म के सिद्धांतों का क्या ज्ञान था, वो तो सारे अधर्म कर रहा था, इतने सारे पशुओं की हत्या कर रहा था, उनके पास क्या आचरण था? ध्रुवस्य चवयो, ध्रुव महाराज के पास कोई बहुत बड़ी उम्र थी उनकी, 5 साल के बच्चे थे। विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास कौन सी डिग्रियां थी? गजेंद्र तो एक हाथी थे, वो क्या शिक्षित थे? कुब्जाया कि नाम रूपम अधिकम, कुछ लोगों को लगता है कि किसी सुंदर व्यक्ति को आकर्षित करना है तो स्वयं को भी सुंदर होना पड़ता है, एक सुंदर व्यक्ति दूसरे सुंदर व्यक्ति को आकर्षित करता है और हम कहते हैं कृष्ण तो सबसे सुंदर है, सभी सुंदर व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ सुंदर है कृष्ण। तो भो जगत में किसी सुंदर व्यक्ति को आकर्षित करना हो तो स्वयं को सुंदर होना पड़ता है। सबसे सुंदर जो कृष्ण है उनको आकर्षित करना है तो हमको लगेगा ना कि हमको भी कम से कम उस स्टैंडर्ड का होना पड़ेगा। हम तो उतने सुंदर नहीं है तो भगवान कृष्ण को कैसे आकर्षित करें। तो नहीं, कुब्जाया कि गुनाम रूप अधिकम। कुब्जा का क्या सौंदर्य था, वो तो कुबड़ थी, उनका पीठ भी सीधा नहीं था, लेकिन कृष्ण को आकर्षित किया। तो भौतिक शारीरिक सौंदर्य कोई योग्यता नहीं है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। कुब्जाया कि गुनाम रूप अधिकम किम तत् सुदानो धनम। यदि एक व्यक्ति धनवान है तो वो दूसरे धनवान व्यक्ति के साथ मित्रता करता है। अब हम कहते हैं कि कृष्ण, कृष्ण तो सभी धन के स्वामी हैं, सबसे धनवान व्यक्ति कृष्ण है, तो कृष्ण के साथ कैसे संबंध जोड़ सकते हैं। अपन तो गरीब हैं, कृष्ण तो इतने अमीर हैं। सुदामा के पास क्या धन था, सुदामा तो कंगाल थे और कृष्ण को वो बस थोड़ा सा पोहा थोड़ा सा चावल खिला रहे थे, वो भी टूटा फूटा, लेकिन कृष्ण उनसे संतुष्ट हुए। वंश को भी दुरस्त, हमें लगता है कि अच्छे कुल में पैदा हो तभी हम दूसरे अच्छे कुल में पैदा हुए व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ सकते हैं। कृष्ण के साथ संबंध जोड़ना है तो क्या हमें ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है। नहीं, विदुर, विदुर तो दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान के कितने बड़े भक्त थे। तो ग्रस्त किम पौरुषम। एक शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति के साथ अपना संबंध जोड़ता है, लगता है कि हाँ हम दोनों एक ही शक्ति के बराबर हैं। कृष्ण सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उग्रसेन, उग्रसेन को तो कंस पकड़कर बंदी बना लिया, लेकिन कंस की हत्या करने के पश्चात कृष्ण ने उग्रसेन को राजा नियुक्त किया। ये नहीं कहा कि अरे तुम तो बिल्कुल कमजोर हो, नालायक हो, नहीं, उग्रसेन को राजा बनाया क्योंकि वो उनके भक्त थे। तो निष्कर्ष क्या है, भक्तिर तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधव। भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति से ही संतुष्ट किए जा सकते हैं क्योंकि माधव का नाम है भक्ति प्रिय। भक्ति से जीते जाते हैं, भक्ति उनको बहुत प्रिय है। इसीलिए उस समय भगवान श्री कृष्ण रण को इसलिए त्यागे क्योंकि उनके भक्त रुक्मिणी देवी का संदेश बहुत शीघ्र आने वाला था। लेकिन इसके विषय में आगे क्या हुआ हम चर्चा करेंगे कल। बोले कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
कृपा सिंधुभ्य एव च
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण
चैतन्याय
नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतारं भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त नमोऽस्तु ते सप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधार शिवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा उपस्थित सभी श्रोताओं का श्रीमद् भागवत पारायण के 11वें और अंतिम दिन पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। रविवार का दिन है, काफी भक्तगण सुबह से मंदिर में रहे हैं, फिर भी इतनी उत्साह के साथ आप यहाँ पर उपस्थित हैं, इसे देख के बड़ा आनंद आ रहा है। तो आज अंतिम दिन हम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को आगे बढ़ाते हुए दशम स्कंद के ही कुछ लीलाओं पर वर्णन करेंगे और उसके पश्चात 11वें और 12वें स्कंद पर चर्चा करेंगे और फिर 7:30 के पश्चात प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम होगा। तो भागवतम में वर्णन आता है, तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदो सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्राशवसे नमो नमः। जो व्यक्ति भौतिक जगत में अपने इंद्रियों का प्रयोग करता है, तपस्विनो दानपरा यशस्विनो, जितनी भी तपस्याएं हम करते हैं, दानपरा जितना भी दान पुण्य हम करते हैं, यशस्विनो जो हमें यश की प्राप्ति होती है, मनस्विनो मानसिक तर्क वितर्क से भगवान या परम सत्य को जानने की जो हम इच्छा रखते हैं, मंत्रविदो सुमंगला अलग अलग मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं और इससे अपने शुद्धिकरण का प्रयास करते हैं, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रा, जब तक हम इन सभी कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में उनकी संतुष्टि के लिए अर्पित नहीं करते, क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं, तब तक इन सभी कार्यों का उचित फल प्राप्त नहीं होता। तस्मै सुभद्रा शवसे नमो नमः, उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी सुंदर लीलाओं के श्रवण मात्र से हृदय का शुद्धिकरण होता है। तो श्रीमद् भागवत का श्रवण हम करते हैं मनोरंजन के लिए नहीं, शुद्धिकरण के लिए। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से हृदय के अंदर जितने भी कलमश हैं वो सभी दूर भाग जाते हैं। तो हमने पिछले 10 दिनों में काफी कुछ लीलाओं पर चर्चाएं की हैं, लेकिन काफी लीलाओं पर चर्चाएं भी नहीं की हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत इतना विस्तारित है और हमारे पास समय इतना कम है कि संभव नहीं कि प्रत्येक लीला पर चर्चा कर सकें। लेकिन कहा जाता है कि श्रीमद् भागवतम एक बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई के समान है। यदि कोई बहुत स्वादिष्ट मिठाई हमारे पास हो तो उस मिठाई को कहीं से भी आप काटो, कहीं से भी तोड़ो, कहीं से भी चखो, वो उतना ही स्वादिष्ट लगता है। इस पर निर्भर नहीं करता कि आप उस मिठाई के किस भाग को तोड़ो। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम भी है, तो इसीलिए एक महान भक्त इस तरह प्रार्थना करते हैं, श्री श्री मद भगवत पदाम्बुज मधु स्वादोत्सवे शतपदे निक्षिप्ता मधु बिंदवश्च परितये भ्रष्टात्मुखाद् गुञ्जितये यत्नै किञ्चिदिहाहृतं परभृतो श्रेयोर्तिना तन्मया भूयो भूय इतो रजांसि पदसं लग्नानि तेषां भजे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जहाँ वर्णन होता है, श्री श्रीमद भगवत पदाम्बुज मधु स्वादोत्सव शतपदे, तो एक शतपद अर्थात मधुमक्खी है, और ये मधुमक्खी मधु के एक बहुत बड़े